यशवर्धन मुस्कुराए और मुझे पूरा भरोसा है कि वो फोकस करेगा। खून वही है यशवर्धन, अखिल की नसों में वही जुनून है जो हमारे खून में था, बशर्ते हम उसे वक्त पर सही रास्ता दिखा दें। दादाजी ने एक गहरी नज़र घड़ी पर डाली, फिर बोले, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने में हम फिर से पहले की तरह ऊपर आ सकते हैं। लोगों की याददाश्त छोटी होती है, बशर्ते हम उन्हें नया कारण दे दें याद रखने का। यशवर्धन उठे और खिड़की की ओर जाकर बाहर देखा। इस हवेली की दीवारें बहुत कुछ देख चुकी हैं यशवर्धन, मगर नाम की नींव तब तक मजबूत रहती है जब तक परिवार के फैसले में एकता हो, और मैं देख रहा हूं अब हम फिर से एक दिशा में हैं। यशवर्धन पास आकर बोले, अगर यही रफ्तार रही तो जो नुकसान हुआ था वो सिर्फ समय की बात रह जाएगा। एक नई शाखा खोलने की संभावना पर भी बात शुरू हो चुकी है। दादाजी ने सिर हिलाया, खूब, पर याद रखना अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। घर के भीतर शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा और अनुशासन होना चाहिए, तभी बाहर की दुनिया हमें फिर से सिर झुकाकर देखेगी। दादाजी की आंखों में गंभीरता थी। मैं ध्यान रखूंगा पिताजी, और अखिल को भी धीरे धीरे उसी छवि में वापस लाऊंगा जिसमें लोग उसे देखकर भरोसा करते थे। दादाजी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। वक्त है यशवर्धन, अब सिर्फ भावनाओं की नहीं परिणामों की लड़ाई है, और इस बार हमें हर हाल में जीत मिलेगी। कमरे के बाहर पुरानी हवेली में फिर से सन्नाटा पसर चुका था। दूर कहीं रसोई घर में बर्तन खनके तो कहीं झूमर की छाया फर्श पर थरथराई, मगर उस एकांत कमरे में जो दो पुरुष बैठे थे वो सिर्फ समय नहीं भविष्य की दिशा तय कर रहे थे, और उनकी आंखों में किसी इंसान के लिए नफरत नहीं, सिर्फ एक नाम को फिर से बुलंद करने की भूख थी। अखिलेश का कमरा। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की पीली रोशनी छत के कोनों में ठहरी हुई थी, और रैना चुपचाप बिस्तर पर बैठे थे, लाल रंग का भारी लहंगा पहने हुए। उसके हाथों में मेहंदी अब गहराने लगी थी, बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थीं, शायद घबराहट या पसीने की वजह से। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, न शोर न आहट, बस हर तरफ सन्नाटा। वो एकदम सीधी बैठी थी, जैसे कोई जवाबदेही उसके सिर पर लटक रही हो। ये कमरा अब उसका ससुराल था, ये बिस्तर अब उसका शादी का बिस्तर था, ये पहचान अब उसकी बीवी की पहचान थी। उसका मन बेचैन था, सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था। शादी तो हो गई थी, मगर ऐसी जैसे किसी ने जबरदस्ती किसी को किसी के हाथ थमा दिया हो। न रस्में ठीक से समझ आईं, न रिश्ते। अब वो मिसेज अखिल राजवंशी थी, एक ऐसा नाम जो उसे आज भी अजनबी लगता था। उसने अपनी उंगलियों के पोरों पर पड़ी मेहंदी को देखा। वो सोच रही थी, क्या अब उसे भी बाकी औरतों की तरह पति की सेवा करनी होगी? क्या अब से उसकी सुबह अखिल के उठने से पहले की चाय और रातें उसके सो जाने के इंतजार में बीतेंगी? क्या अब से उसका हर रिश्ता इसी नाम से जुड़ जाएगा? अखिल, उसने धीरे से खुद से कहा। वो नाम बोलते भी डर रही थी। उसने सुना था कि शादी के बाद पहली रात, सुहाग रात, बहुत खास होती है। लड़की को संवर कर बैठना होता है जैसे किसी फिल्म की नायिका। वो खुद को देखकर मुस्कुरा दी। क्या मैं भी वैसी दिख रही हूँ? शायद। फिर अचानक उसे ये सोचकर झिझक हुई कि अगर अखिल आया तो? उसका मन कांप गया। अखिल उसे पसंद नहीं करता, उसने कभी कोई स्नेह नहीं दिखाया, बल्कि जब भी देखा तो जैसे उसे देखकर कुछ दबाने की कोशिश करता हो। अगर वो आया और उसने जबरदस्ती की कोशिश की तो क्या करेगी रैना? उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसकी पत्नी हूं, उसने मन ही मन कहा। शायद यही मेरा धर्म है, पत्नी धर्म। मन में हलचल थी, डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सी स्वीकृति भी, जैसे वो अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि अब यही उसका रास्ता है, यही उसका घर है, यही उसका पति है, और अगर पति चाहे तो पत्नी को कुछ भी कहने का हक नहीं। अगर वो आया और पास आया, और अगर सब वैसा ही हुआ जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। उसके गाल गरम हो गए, शर्म से नहीं उलझन से। लेकिन फिर भी, जैसे हर लड़की सपने देखती है, वो भी कुछ पल के लिए उन सपनों में खो गई। शादी के बिस्तर पर बैठी वो ये सोचने लगी कि क्या होगा अगर अखिल उसके करीब आएगा, उसकी चूड़ियों की खनक सुनेगा, धीरे से उसके घूंघट को उठाएगा और बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखेगा। उसने गहरी सांस ली। वो नहीं जानती थी कि अखिल आएगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी उस लम्हे का इंतजार था, चाहे डर के साथ चाहे उम्मीद के साथ। उसने धीरे से अपना लहंगा ठीक किया, चूड़ियां खनकी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसका मन अब कहीं और जा रहा था, उन सपनों में जहां एक दिन वो और अखिल शायद सचमुच पति पत्नी बन जाएंगे।